राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 अप्रैल 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन में हुआ। राम।
नारायण 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 नारायण।
आपके विचार बताओ।
मेरे विचार से तो ऐसी बात मालूम होती है कि जो संयोग से सुख होता है ये सुख वास्तविक सुख नहीं है और इसमें प्रसन्नता है ही। संयोग से सुख होने में स्वतंत्रता है ही नहीं, किंचित मात्र में स्वतंत्रता नहीं, सर्वथा पराधीनता है। पराधीन सुपने सुख नहीं, इसमें संकोच बोलो क्या संबंध जन सुख है उसमें स्वतंत्रता है अपनी, संकोच बोलो। बिल्कुल पक्की बात, गीता ने योग की दो परिभाषा की है, ऐसे तीन जगह आती है बात, वो एक वो परिभाषा नहीं है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग नाम किसका है, दुखों के संयोग का वियोग है। दुखों का संयोग कहाँ होता है, जहाँ संयोग जन सुख होता है वह दुखों का ही संयोग है। वो मार्मिक बात है, दुखों के संयोग का ही वियोग, यही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के ही कारण है, संबंध जन्य सुख है वो दुखों का कारण है और आदि और अंत वाला है, क्योंकि संयोग हरदम नहीं रहता और स्वतंत्रता नहीं रहती, पराधीनता होती है। रुपया मिलने से सुख होगा तो रुपयों के अधीन हुआ ना, स्त्री पुत्र परिवार के मिलने से सुख हुआ तो उनका मिलना पराधीन हुआ ना, और आदि और अंत वाला होगा। भगवान ने गीता में कहा है थोड़े से शब्दों में, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न ये होती और आदि अंत वाले है। संयोग आदि और अंत वाला होगा, नहीं आदि वाला ही होगा अंत वाला भी होगा, पहले नहीं है पीछे नहीं रहेगा। दुखों का कारण है खास, दुखों का कारण होने से दुख संयोग वियोग में हो, संयोग जन सुख नहीं चाहेगा तो दुखों का वियोग हो जाएगा। संयोग जन सुख से ही दुख होते हैं, जितने दुख होते हैं संबंध मात्र से। एक तो योग की परिभाषा ये करी है, एक ये समत्वम योग उचित है, समता, तो समता में कोई पराधीन नहीं है, स्वयं की समता है। यही उत्तेज देता है सर्गो ये साम्य स्थित माना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ इस लोक में जीवित अवस्था में इस संसार में जीत लिया है। निर्दोष और सम ब्रह्म, निर्दोष और सम है, तो स्वरूप आपका सम है, स्वाभाविक सम स्वरूप है, उस सम में स्थिति हो जाए तो सम दुख सुख स्वस्थ, तो सुख दुख में सम हो जाएगा वो स्वस्थ सुखी हो जाएगा। सुख दुख में सम नहीं होगा वो पराधीन होगा और प्रकृतिस्थ होगा, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भोगते, प्रकृति में सत्यता ही भोगता है सुख दुख को, स्वयं स्थित नहीं होता, स्वयं स्थित होता आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, उसमें सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। सहज सुख राशि, सहज सुख, वो कृत्रिम सुख नहीं, संबंध जन्य सुख नहीं, पराधीनता से पैदा होने वाला सुख नहीं, आदि और अंत वाला सुख नहीं, सहज सुख राशि, तो वो समता है, उसका नाम योग है। गीता का योग बहुत विलक्षण योग है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है वो, उसमें योग चित्त वृत्ति निरोध बताया। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने का नाम सुख है, वो योग है, उसको योग कहा है। तो चित्त की वृत्ति होती है मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमिका होती है चित्त वृत्ति। तो निरोध आखिरी भूमि है, बिल्कुल वृत्तियों का निरोध हो जाए। वृत्तियों 5 तो है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन संपूर्ण वृत्तियों का सर्वथा निरोध, उसका नाम योग है। तो निरोध करोगे, इनको रोकोगे तो तीजा वित्थान भी होगा, फिर दीवार में भी आवे हुए। तो वो वित्थान होती है, वो समाधि होती है। ये पतंजलि मना रही योग और गीता योग कैसी, समत्वम योग उससे, समता का नाम योग है, दुख संयोग वियोग का नाम योग है। तो ये क्या योग हुआ, ये वो निरोध करने वाली वृत्तियों का संबंध विच्छेद है, वृत्तियों का निरोध करना नहीं है, किंतु वृत्तियों का संबंध। तथा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, निरोध होने में क्या होता है कि दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। तथा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, तदा तो यदा न तदा, तदा फिर होती है तदा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और समय वृत्ति की स्वरूपता वृत्ति के साथ मिला रहता है। निरोध होने से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। गीता ने सीधा ही समर्थम हो गुजरते दृष्टा के स्वरूप में स्त्री का नाम ही योग बताया है। पातंत्र योग दर्शन का जो फल है वो योग बताया गीता ने, समर्थम योग उचते। तो चाहे तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, चाहे अपने स्वरूप से अलादि जो प्रकृति, प्रकृति पुरुष विधि आदि उभव हो गई, पुरुष अपनी स्थिति हो गई, समता स्थिति हो गई, और प्रकृति से जो वियोग कर दिया तो उसका नाम भी योग है। दुखालय में शाश्वतम है, दुखालय से अलग हो गए तो भी योग है, और स्वरूप में स्थिति होगी तो नाम हो, दोनों का नाम योग बताया गीता ने। एक गीता में योग कर्म सुकौशलम, वहां भी कर्म सुकौशलम योग है, कर्म में कुशलता उसका नाम योग है। तो कर्म के कुशलता है वो योग है, ये योग की परिभाषा नहीं है, ये योग की महिमा है। कि योग में क्या होता है कि कर्म जितने गए कर्मों में योग ही कुशलता है, मगर कर्मों में योग ही महत्ता की चीज है, कर्म महत्ता की चीज नहीं है। कर्मों के करते हुए जो समता रखना है, राग द्वेष हरक शोक न होना है, ये ही उसमें कर्मों में सार चीज है। योग कर्म सुकौशलम, कर्म सु कौशलम योग, उसमें कुशलता क्या है, योग है, जो समता है वही कुशलता है। ये नहीं कर्म कौशलम योग, कर्म कुशलता का नाम योग है, ये ऐसा नहीं है। कुशलता का नाम है चोरी करे, ज्यादा आदमी में चोरी करे पता नहीं करते, कर्म में कुशलता तो वो है, उसका नाम योग थोड़ी होता है। कर्म सु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, समता की ही जो महिमा है, कर्मों की महिमा नहीं है। कर्मयोग में कर्मों की महिमा नहीं है, कर्मों के प्रसार कर्मों का कोई बड़प्पन नहीं है, योग की विशेषता है। तो वो है योग की महिमा, योग की परिभाषा वो नहीं है। तो समर्थन योग उसे दुख संयोग वियोग वियोग संगतम, कितने ही पदार्थों का संयोग मिले परंतु उसका वियोग सा होगी। एक युक्ति संगत बात बताता हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग सुने। आपको कितनी भूख लगी हुई हो परंतु भोजन करने की मन में आती है तो भोजन के त्याग की मन में आती है, बस अब नहीं रहेंगे के और के नाते नहीं, अब नहीं खा सकते। कितने रुपयों की आपके लालसा लगी है पर अब नहीं चाहिए, ऐसा होगा एक दिन। जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय है, इस विषय से अरुचि जरूर होगी, ये नियम है। परंतु जो स्वरूप भूत सुख है उसमें अरुचि कभी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है, वो उसका नाम योग है, वो स्वरूप स्थिति है। तो स्वरूप स्थिति है ज्ञान मार्ग की, और भक्ति मार्ग की स्वरूप स्थिति में जो परमात्मा का अंश है वो अंश ही में साथ मिलना है, वो होती है भक्ति। अपने को संसार से अलग होना है, ये होता है ज्ञान, और अपने को परमात्मा के साथ उत्कंठित कर देना, ये होती है भक्ति। और कर्मों के करते हुए जो समता है उसका नाम होता है कर्मयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन योग है, ये वास्तव में है। तो ये कम से कम मेरे को कहा तुम्हारे अवश्य कहो मन में, तो हमारे मन में आएगी ये बात, आप कृपा कर थोड़ा समझो कि पराधीनता में सुख नहीं है, स्वाधीनता में सुख है। स्वाधीनता के सुख होने पर भी इससे भी सुख जबड़ करके है भगवान के साथ उत्कंठित होने में, वो स्वरूप भूत सुख अखंड है, शांत है, परंतु वो प्रतिक्षण वर्धमान है, भगवान के साथ मिलना है, वो मिलना बहुत भीक्षण आनंद है। प्रेम से ज्ञान से भी प्रेम ऊंचा माना गया है, तो वो एक बड़ा सुख है। तो ये सुख प्रत्यक्ष आपको और हमारे को दिखना चाहिए।
ज्ञान में और प्रेम में अंतर क्या है?
ज्ञान में और प्रेम में अंतर है, ज्ञान में शांत है, अखंड है, ऐसे शांत रस है, अखंड रस है, स्थिर रस है, गंभीर रस है, आनंद है ऐसा। और प्रेम में खिंचाव है, जैसे भोगों में खिंचाव होता है, भोग नहीं मिले तो भोग में खिंचाव होता है, भोग मिलने पर फिर अरुचि हो जाती है, तो खिंचाव तो होता है, अरुचि होती नहीं है उसमें, और खिंचाव बढ़ता है, संसार का खिंचाव बढ़ता नहीं है, ये तो मिटता है, वो खिंचाव बढ़ता है। तो ज्ञान में तो एक रस रहता है, और प्रेम में वो रस बिल्कुल रीति से बढ़ता है। देखो पहले विश्वास करना पड़ता है, अक्सर भी हम सीख है तो ये क है ऐसा विश्वास करना पड़ता है, तो कैसे सीखोगे बताओ? ए बी सी डी सी गुरु ए बी अक्सर मानना पड़ता है पहले, ये ए है ऐसा मानना ही पड़ता है, और क्या उपाय है बताओ? ऐसे ही मैं जो बात कहता हूँ ये बात माननी पड़ती है पहले, फिर आपको पता लगेगा, नहीं तो आप इसको पता लगा नहीं सकते। देखो आप क्षमा करना, मेरे को आश्चर्य आता है, बहुत आश्चर्य आश्चर्य, ये कौतूहल पैदा होता है कि बात इसी कहते फिर भी परवाह नहीं है, क्या कारण है? आप ध्यान नहीं देते, ना तो उनको समझने का ध्यान देते हैं, और ना मेरी बात पर विश्वास भी करते हैं। चाहे तो अनुभव करो, चाहे विश्वास करो। तीसरा उपाय को हमें दिखता नहीं है, अगर आपके विश्वास हो जाए तो आपकी स्थिति बहुत विलक्षण हो सकती है, बहुत जल्दी हो सकती है। और अनुभव करो तो अनुभव से तत्काल ही विलक्षण आ जाएगी, एकदम ही अनुभव करते। ये दो ही उपाय है, अनुभव करना अथवा विश्वास करना। अज्ञस्त असतार सबसे आत्मा विनिश्चय थी, चौथे अध्याय का 40वां श्लोक है, तो चार तुम्हारी सभी तुम्हारी धारा है। ये अज्ञस्त असतार स्वयं तो जानता नहीं, दूसरी बात मानता नहीं, खत्म हो गया काम, अब क्या करे वो? चाहे दूसरी माने तो ठीक हो जाए, चाहे स्वयं जाने तो ठीक हो जाए, तो स्वयं तो जानते नहीं, दूसरी मानते नहीं। एक बात आई मन में, कहने में थोड़ा संकोच होता है, पर तुम निर्णय जो कह देता हूं मैं, तो मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा है पूरा, और वेदांत के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, आचार्य तक परीक्षा की पुस्तक है वो मैंने पढ़ी है, पढ़ाई में संस्कृत की, और यू बस इस हिंदी का संस्कृत का पूरा नहीं पढ़ा है, हिंदी का जो प्रचलित है नहीं वो मैंने पढ़ा है। और पढ़ने पर ऐसा अनुभव हुआ कि ज्ञान तो हो गया, अब बाकी क्या रहा, अब कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ जानना करना बाकी नहीं रहा, ऐसा विचार भी आ गया, मन में भी आ गई ठीक तरह से बात है। परंतु पोल निकली भी से सांसारिक पदार्थों में, मन में, भोगों में मन की रुचि रहती है, तो ये वास्तविक चीज नहीं मिली। अगर वास्तविक चीज मिले तो ये रुचि सर्वथा नष्ट हो जाए, बिल्कुल सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है, ऐसी अलौकिक बात है कि जो सभा में कह नहीं सकता, ऐसी बात है। खिंचाव रहेगा नहीं मन का, कोई मूल्यवान वस्तु दिखेगी नहीं, मान है, बढ़ाई है, आदर है, निकमा रहना पड़े रहना है, ये सुख है अलग, शब्द स्पर्श पास गंधे पांच विषय है, पांचों विषय एक मान है, एक बढ़ाई है, एक आलस में पड़े रहना है, ये सब सुख है, आठ प्रकार के सुख है। इन सुखों में किसी में आकर्षण नहीं रहता, ताकत नहीं रहती है, कुछ आकर्षण रह जाए मन में, अरे आकर्षण जब तक किंचित मात्र भी है और अच्छा लगता है तब तक वो तत्व नहीं मिला है। एकदम पक्की सिद्धांत की बात है। तो ऐसी बात होने पर जो अपना कल्याण चाहता है वो आदमी टिक सकता नहीं। मैंने जो पढ़े हैं और पढ़े नहीं पढ़ाए हैं, वेदांत पढ़ाए तो नहीं, वेदांत ग्रंथ पढ़ाया है औरों को, पढ़ाने के लिए पढ़ा, तो पढ़ाने से जो समझ में आता है वो पढ़ने समझ में नहीं आता है, पढ़ने की समझ में नहीं आता जो पढ़ाने में समझ में आता है, बहुत भी समझ में आती है बात। तो ये बातें मेरी देखी हुई है, पर देखने पर भी हमारे संतोष नहीं हुआ। सच्चा जिज्ञासु होता है वो समय बर्बाद नहीं करता है, वो अटकता नहीं है, उसकी वो भीतर में जिज्ञासा ऐसी जागती है जो कोई रोक सकता नहीं है। अगर नहीं लगी है तो अभी तक इस विषय का मार्ग में लगा नहीं है, इस विषय के मार्ग में लगा नहीं है, वो जानता नहीं है, जानेगा तो अटक सकता नहीं है, मेरी लगन लग जाएगी भीतर से। ऐसी बात है, हम इस बात को जाने, तो जाने जाने से पहले करेगा विश्वास, तो बिना विश्वास श्रद्धा मानना बताइए ज्ञान, श्रद्धा विश्वास के बिना कैसे प्राप्त होगा। तो ऐसी बात है, तो मेरे मन की आपको तुम्हारे मन की मेरे मन की बात अगर आप लोग जान रहे तो आप रह नहीं सकते उस तत्व के बिना, बिना तत्व के नहीं रह सकते, तत्व ज्ञान हो जाएगा, देरी लगेगी नहीं किंचित मात्र, देरी यही है जो बेपरवाह हो रही है और लापरवाही देरी, और कोई देरी नहीं, कारण नहीं। तो ये बात है सब, अभी मैं शंका हूँ बोलो, आप लोग संदेह होता हो बोलो। तो वो चटपटी भी लोग देखते नहीं है, कोई बातें सुनकर संतोष करना है बड़ा भारी धोखा है, विश्वासघात करे के आदमी के साथ में, जो अपने के साथ में विश्वासघात करना है, विश्वासघाती महापापी होता है। विश्वास प्रतिपत्ता नाम ये भी विश्वास घात का ते नरा नरक जानते यावत चंद्र दीवार करो, जब चंद्रमा सूर्य तब तक नरक में रहेगा, विश्वास घाती महापापी हो वो, आपने गाते गीता में कहा है नहीं निश्चित आत्मा न आत्मान तत्व ऐसे पदार्थ हो अपनी हत्या करता है समम पश्यन्ति सर्वस्व समम वस्तुति ईश्वरम ऐसे सब को देखता है तो वो अपनी हत्या नहीं करता नहीं तो आत्मघाती है अपनी हत्या करता है स्वयं महापापी है आत्मघाती महापापी अट्ठाईसवें श्लोक है 30-13 अध्याय का 28वां श्लोक इस वास्ते इससे ऊंचे उठने की मन में लालसा जागृत हो जानी चाहिए कि इसको समझना है कहीं मिले किसी पुस्तक में मिले किसी व्यक्ति से मिले किसी संघ में मिले किसने से मिले इसको जानना है ऐसी चटपटी लगे नहीं तब तक मिली नहीं चीज मिलती नहीं और ज्यादा लगने से मिलती है इसमें केवल इसी जरूरत है योग्यता कैसी है आपका अंतर्गत कैसा है शुद्ध है अशुद्ध है किसकी परवाह नहीं है नारायण 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 ऐसी बात है।